ओम शांति। इस सभा में उपस्थित आप सभी समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं और आपके द्वारा समाज में बहुत सेवा होती है, तो ये टॉपिक जो पावर ऑफ साइलेंस टॉपिक है, ये मैं समझता हूँ खाली जूरिस्ट के लिए नहीं या वकीलों के लिए नहीं, बट सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज सारे समाज में हम देखते हैं कि आज सब तरफ केओस हो रहा है। केओस समझते हैं, सब जगह प्रॉब्लम्स हैं, हर जगह परिवार में प्रॉब्लम है, इंसान के अंदर प्रॉब्लम है ना, और देश में प्रॉब्लम्स हैं, विश्व में प्रॉब्लम्स हैं। इन सबका कारण क्या है? कहीं ना कहीं जो साइलेंस पावर थी इंसान के पास जो है कम हो गई है। तो साइलेंस पावर है क्या चीज? व्हाट इज साइलेंस पावर? व्हाट इज पावर ऑफ साइलेंस? जैसे अभी आपसे रिसर्च की बात कर रहे थे, हमारी जो सिस्टर अभी बात कर रही थी, माउंट आबू में दिल्ली में था, पहले स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट में था दिल्ली में, और वहां मैं सोचता था कि देखते हुए मैं देखता था कि लोगों के हम एंजियोप्लास्टी बाईपास करके भेजते हैं, फिर आस्ते आर्टरी बंद हो जाती है। तो तब मेरे मन में ऐसा आया कि हम रिसर्च, क्योंकि ये रिसर्च हार्ट की बीमारी पहले तो 1960 तक 100 लोगों में से एक आदमी को होती थी, किंतु 1990 आते आते ये बीमारी लगभग 8% लोगों को होने लगी, 100 में से 8 लोगों को होने लगी थी, और 95 के आसपास तो ऐसा लग रहा था हमें देखने में कि जो हमारी 60 साल के बाद आती थी वो पहले ही आनी शुरू हो गई थी, 40 साल से पहले आनी शुरू हो गई थी। तो बड़ा कंसर्न था हम लोगों को, और एंजियोप्लास्टी बाईपास करते वही बंद हो जाते थे। तो तब एक ऐसा रिसर्च प्रोग्राम बनाया कि जिसमें हम एस्कॉर्ट में था, तो साथ में हमने डीआरडीओ को लिया, डॉक्टर कलाम साहब को लिया, डॉक्टर कलाम साहब तो उसमें डीआरडी को डायरेक्टर जनरल थे, साथ में 3 हॉस्पिटल्स दिल्ली के, अहमदाबाद और मुंबई के एक हॉस्पिटल को लिया, बड़े हॉस्पिटल्स को लिया, और तीनों के साथ मिलकर कोलैबोरेशन करके हमने एक रिसर्च प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को दिया। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जो बात बता रहा हूं कि इसी पावर ऑफ साइलेंस से कनेक्टेड है। तो हमने जो है फिर इसको करने के लिए मैं दिल्ली में सोचा, पहले दिल्ली में करेंगे, दिल्ली वालों ने मुझे कहा नहीं आप यहां रिसर्च करो, हमें आपको सारी फैसिलिटी देंगे, कि तो मुझे अंदर से लगता था नहीं, क्योंकि जब मैं एम्स में था दिल्ली में और नेशनल मेडिकल साइंसेज में था दिल्ली में 1986 में, तो तभी मुझे ऐसा लग, मैं तभी ब्रह्मा कुमारी से कांटेक्ट में पहली बार आया, जा रहे थे फिल्म देखने, किंतु फिल्म देखते देखते हम कहां पहुंच गए, रास्ते में एक ब्रह्मा कुमारी सेंटर था, बाहर लिखा था गेटवे टू हेवन, तो वाइफ ने कहा नहीं आप तो मेरे को गेटवे टू हेल में लेके जा रहे हो, ये गेटवे टू हेवन है, इसमें जाना चाहिए। तो वहां ना जाके, फिल्म ना जाके, अंदर उस म्यूजियम में गए, वहां म्यूजियम था ब्रह्मा कुमारी का साउथ एक्सटेंशन में, और जब से हम अंदर गए तब से अंदर ही हैं, हम बाहर आए नहीं उसके बाद। तो अब हेवन में ही हैं हम, है ना। तो जब मैं, क्योंकि मेरे को मेडिटेशन का अनुभव था, जब से मैंने सीखा मेडिटेशन करना, राजयोग मेडिटेशन करना सीखा, क्योंकि साइंटिफिक माइंड था, हम हार्ड कोर साइंटिस्ट थे, हार्ड कोर साइंटिस्ट डॉक्टर जो थे ना, मतलब डॉक्टर में भी जो होते ना वो तो हार्ड कोर साइंटिस्ट, बिना प्रूफ के बात नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे कोई बात पे भी, क्योंकि हमें हर चीज का एविडेंस चाहिए, तो हम लोग ऐसा समझते थे। तो मुझे बड़ा कन्विंसिंग लगा, आप आत्मा हैं और आत्मा के साथ एनर्जी है आत्मा के अंदर, और वो सातों हमारी बॉडी के 8 अंगों को चलाती है, आत्मा ड्राइवर है, शरीर कार है, और वो ड्राइवर उसको चलाता है, उस कैसे चलाता है, वो 7 एनर्जी उसके पास है, और 3 शक्तियां हैं, सूक्ष्म शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार, बुद्धि स्टेरिंग है, और मन जो है क्लच और एक्सेलेटर ब्रेक नीचे होती है ना, मन वहां पे है, और संस्कार जैसे हम स्पीड से चलाना चाहें, स्लो चलाना चाहें, फास्ट चलाना चाहें, रैश चलाना चाहें, वो हमारे संस्कार है। तो 3 आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां और 7 एनर्जी से ये गाड़ी चलती है। और परमात्मा कौन है? परमात्मा 7 एनर्जी का सागर है, पावर है, पावर हाउस है, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, इसलिए परमात्मा आत्मा परमात्मा को याद करे तो बैटरी चार्ज हो जाए, चार्ज हो जाए माना सातवीं एनर्जी मेरे अंदर आ जाए, और सातवीं एनर्जी मेरे अंदर आ गई तो ये जो बैटरी अभी कार ठीक नहीं चल रही, इसका कभी हार्ट खराब हो रहा है, कभी लीवर खराब हो रहा है, कभी गैस बन रही है, कभी सांस ठीक से नहीं आ रहा है, कभी सिर में दर्द हो रहा है, कभी गर्दन में दर्द हो रहा है, कभी कमर में दर्द हो रहा है, कभी घुटने दर्द कर रहे हैं, कभी डिप्रेशन हो रहा है, कभी नींद नहीं आ रही है, कभी उदासी है, कभी चिंता हो रही है, कभी डर लग रहा है, क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस? ये सातवीं एनर्जी कमी की वजह से हो रहा है, क्योंकि आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। चार्ज करें तो सातों करंट आ गई वापस, तो वापस करंट अंगों में जानी शुरू हो गई, वापस चालू हो गए, चलने शुरू हो गए। जैसे आप मोबाइल देखो तो मोबाइल डिस्चार्ज होता क्या होता है, क्या आवाज आती है, लो बैटरी, लो बैटरी आती है ना आवाज में, लिखा होता बार बार लो बैटरी, सुनाई देता नहीं क्या बोल रहा सामने वाला, तुम्हारी आवाज सामने वाले तक पहुंचती नहीं, तो गुस्सा भी आता है, बेचैनी भी होती है ना, ऐसे होता नहीं होता, सेम चीज हमारी बॉडी में होती है। तो ये जो था कि ऐसा बैटरी डिस्चार्ज क्यों हुई, तो ये जो था मेरे अंदर, ये मुझे राजयोग में बैठे समझ में आया, और तब से मैंने जब से समझ लिया, हालांकि मैं बहुत बिजी था, मेरा टाइम जो था वो 7 बजे से लेके हॉस्पिटल का टाइम 7 बजे से जाता था, रात को 2 बजे तक मेरा काम चलता था हॉस्पिटल, 2 बजे घर आता था, 2 से 6 तक सोता था, 6 बजे नहा धो के फिर 7 बजे पहुंच जाता था हॉस्पिटल, उसमें पीजी कर रहा था मैं, एमडी कर रहा था, तो एमडी में तो आपको पता कैसे कैसे करना पड़ता, दिन रात काम करना होता है, तो तब की बात है ये। और तब से मैंने देखा कि नहीं, ये जो मेरी एनर्जी है, मुझे इतनी एनर्जी कहां से आएगी, तो मैंने तब से 4 बजे उठ के मेडिटेशन करना शुरू किया, अमृत वेला जिसे कहते हैं, 4 बजे में मुरली सुननी शुरू की, और उससे मैंने तब से लेके आज तक ये पक्का अभ्यास किया। जो मेरी नेचर थी, जो मेरी कमजोरियां थी, जल्दीबाजी की आदत, चिंता करने की आदत, सेंसिटिव नेचर, इमोशनल नेचर, एंजाइटी रखना, और भी बहुत सारी बातें थी, वो मैंने देखा परिवर्तन होने लगी। और जब मैंने हार्ट पेशेंट्स को देखा, तो जल्दी चिंता गुस्सा करने वालों को रिसर्च भी हुई थी उन दिनों, कि जल्दी चिंता गुस्सा वाले करने वालों को ज्यादा हार्ट अटैक्स आते हैं, जो गुस्सा करते हैं उनको 3.5 गुना अधिक हार्ट अटैक्स आते हैं, जो बात से मूड ऑफ कर लेते हैं उनको 5 गुना अधिक हार्ट अटैक्स आते हैं, जो जल्दीबाजी में रहते हैं उनको 3 गुना अधिक हार्ट अटैक्स आते हैं, जो उदास रहते हैं उनको 5 गुना, मैंने बताया आपको, जो अपने मन की बातें शेयर नहीं करते, टेंशन शेयर नहीं, उनको ज्यादा हार्ट अटैक। तो ये जो सब बातें थी जिसके कारण ज्यादा हार्ट अटैक्स आ रहे थे, तब मैंने जब तब मेरे मन में ऐसे संकल्प उठे, 4 बजे के मेडिटेशन में मुझे समझ में आया कि कैसे हमारी आर्टरीज ब्लॉक होती है, कैसे मुझे ब्लड प्रेशर डायबिटीज होती है, क्यों मुझे एसिडिटी होती है, क्यों मुझे दमा होता है, इस तरह की बातें समझ में। तो एक रिसर्च प्रोग्राम बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को सबमिट किया, और फिर हमने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया इस प्रोग्राम, मैंने तब ये माउंट आबू शिफ्ट कर लिया परिवार के साथ, April 1995 में शिफ्ट कर लिया, दिल्ली छोड़ दी, दिल्ली में मैंने कहा दिल्ली में ये चीजें पॉसिबल नहीं है, बहुत केओटिक लाइफ है, तो यहां पर आके मैंने फिर रिसर्च करनी शुरू की, ये क्या है, क्यों, कैसे होती है। तो हमने एक ब्रेन का ईईजी टेस्ट होता है, ईईजी जानते हैं आप, जैसे हार्ट का ईसीजी होता है, ब्रेन का ईईजी इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राम होता है, तो हम ब्रेन की एक्टिविटी को देख सकते हैं। मान लीजिए हमने आपके सिर को कैप लगा दिया, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, और अभी हम आपको, आप आराम से बैठे हैं, तो हम रिदम चेक कर रहे हैं, उसको हम बीटा रिदम कहते हैं, 1 सेकंड में 13 से 18 बार ब्रेन की वेव ऐसे ऐसे करती। हमने आपको कोई कहा प्रेशर, कोई आपके यहां हेडफोन लगा हुआ है, आपके मन में ऐसे थॉट डाले, कोई जल्दीबाजी के थॉट, जल्दी करो, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा होने जा रहा है, जल्दी करो, अभी फिजिकली कुछ नहीं करा, मन में जल्दी कराई, उसको उसका इफेक्ट देखा, तो विचार बढ़ के उसके 20-22 हो गए, वो जो फ्रीक्वेंसी 20 से 22 हो गई। हमने उसको और चिंता करने, उसके मन में और चिंता पैदा की, ऐसी खबर सुना करके, जो साइंटिस्ट थे ना हमारे पास DRDO के आते थे, उनके पास सब इक्विपमेंट लेकर के आते थे, यहीं पर ही आते थे माउंट आबू में, तो फिर उन चिंता पैदा की, एंजाइटी पैदा की, उसका असर देखा हमने, क्या असर हुआ, और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, 25 हो गई, 26-27 हो गई इस ईईजी के रिदम, और हमने उसको इरिटेट किया, ऐसे कुछ विचार उनको फीड किए, क्योंकि पहले तो इसकी हिस्ट्री अपने ले ली कि इसकी स्वभाव, इसकी नेचर कैसा, इसकी जलाई में क्या क्या बीता हुआ है, फिर उसको गुस्से की बातें उसको कराई, गुस्सा दिलाया उसको, है ना, तो फिर गुस्से का असर देखा, 30 हो गया इरिटेट, 30 पे हो गया, और 35 जब और गुस्सा जोर से आया तो उसको 35 हो गया, और जोर से आया तो 40 हो गया, और जब और गुस्सा दिलाया तो वो एकदम से उसका कंट्रोल खत्म हो गया, और 35 पे तो ऑलमोस्ट पागल जैसा हो गया, 45 पे। तो ये है केओस, मतलब अंदर से आदमी की इंसाइट ही खत्म हो गई, वो क्या बोल रहा है। आपने देखा गुस्से में आदमी कैसा हो जाता है, चिंता में डर में कैसा होता आदमी, उसको समझ नहीं आता क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इसके बजाय फिर हमने क्या किया, ये तो हमने इस तरफ देखा, और खाली ये नहीं देखा, हमने ईजी देखा, एक हमारे पास और सिस्टम था हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। हमारे में दो तारे होती हैं, दो हाइपोथैलेमस से नीचे दो कंट्रोल सिस्टम, हाइपोथैलेमस राइट और लेफ्ट ब्रेन का कंट्रोल रूम है, उसके नीचे दो तारे हैं, दो सिस्टम गए हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं उसको, एक लाल तार सिंपैथेटिक सिस्टम, एक हरी तार पैरासिंपैथेटिक सिस्टम। वो पूरी बॉडी की सेल्स में गई है करंट। जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो लाल तार एक्टिव हो जाती है, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है, हमारी आर्टरी सिकुड़ जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, टेंशन वाले हार्मोन्स बढ़ना शुरू कर देते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बनना कम हो जाता है, अंदर की आर्टरीज की लाइनिंग खराब हो जाती है, उससे उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो वो हमारे अंदर शुरू हो जाता है। और जैसे ही हम रिलैक्स होते हैं तो सब कुछ सिस्टम ठीक हो जाते हैं, हार्ट रेट कम, बीपी कम, खून पतला हो जाएगा, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, लाल तार एक्टिव, नींद नहीं आएगी, डेंजर वाली बात। तो ये हमने सारा हमने सब लगा दिया, इलेक्ट्रोड लगा दिया, सब ईसीजी सब लगा दिया गया है ना, ईसीजी भी लगा दिया, हार्ट रेट भी देख रहा है वो, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी भी चेक कर रहे हैं, और ब्रेन की रिदम भी ईजी भी आ रहा है ना, और साथ में ब्लड सैंपल भी ले लिए, ये सब काम हम साथ साथ कर रहे हैं। नेगेटिव का इफेक्ट भी देख रहे हैं, फिर पॉजिटिव इफेक्ट देखा, फिर हमने उनको राजयोग का मेडिटेशन कराया। अब राजयोग का मेडिटेशन क्या है, अभी रामनाथ भाई क्लास में आपने सुना, राजयोग का मेडिटेशन क्या है, जैसे उन्होंने बताया, पांच बातें बताई, मैं कौन, मेरा रूप क्या, मेरे गुण क्या, मेरे कर्म क्या, और मैं कहां से आया, मुझे कहां जाना है, ये पांच प्रश्न है ना। किंतु वो ठीक है राजयोग, वो सिस्टमेटिक मतलब एक एफर्ट है अपने आप को देसी डिटैच करने की, फिर तो ज्ञान पर, ये जो राजयोग का ज्ञान है जो परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के तन से दिया, जिसकी आज सुबह क्लास भी हुई होगी आपकी, ये जो ज्ञान है, ज्ञान माना समझ, सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, सत्य क्या है, सत्य की परिभाषा क्या है। सत्य के अंदर दो बातें होती हैं, एक तो सत्य एटर्नल होता है, सत्य कभी पैदा नहीं होता, कभी मरता नहीं है, अविनाशी है। दूसरा, सत्य कभी बदलता नहीं है, जैसा है वैसा का वैसा रहता है। तो एक इंसान में सत्य क्या है, एक इंसान में सत्य क्या है, देह सत्य है, देह एक दिन पैदा हो, एक दिन मर जाएगी, रोज बदल रही है, देह तो मैं नहीं हूं। अच्छा, आप कहते हो मैं एडवोकेट हूं, आप एडवोकेट हैं, ये सत्य है, एडवोकेट आपका रोल है, आप सारा दिन एडवोकेट हैं क्या, आप कोर्ट में एडवोकेट हैं, घर में भी एडवोकेट हैं, बोलो, आपके बच्चे क्या बोलते हैं, वकील साहब, हाँ, आपको क्या बोलते हैं, पत्नी क्या बोलती है, वकील साहब बोलती है, घर में आप एडवोकेट हैं क्या, घर में आप पिता हैं, पति हैं, माँ है, पत्नी है, नहीं, किसी की बहन है, किसी के भाई है, नहीं, ऐसा नहीं क्या, तो रोल बदल गया, नहीं बदल गया, बदल गया, तो बाई डेफिनेशन जो बदलता है वो सत्य नहीं है, ये लेबल है, नहीं, मैं डॉक्टर हूं, अच्छा आप पैदा एडवोकेट हुए थे क्या, तो पैदा हुए तो एडवोकेट थे क्या, एडवोकेट तो नहीं थे, आप प्रोफेशन बदल भी सकते हैं कभी, जब चाहे प्रोफेशन बदल भी सकते हैं, तो ये भी आप नहीं है, ये तो आपका रोल है, तो ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है, सत्य है कि मैं एक आत्मा हूं। देखो, एक पेशेंट, सीरियस पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, और वो हम उसको बहुत सीरियस है, हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं, उसको वो मर जाता है, उसको हम बचा नहीं पाते, तो तो डॉक्टर क्या कहता है पेशेंट के रिलेटिव को, बाहर पेशेंट के रिलेटिव खड़े हैं इमरजेंसी के बाहर, क्या कहेगा डॉक्टर बताइए आप, पेशेंट के रिलेटिव को क्या कहेगा? आई एम सॉरी, वी ट्राइड अवर बेस्ट, ही हैज गॉन और शी हैज गॉन, हमें अफसोस है, हमने बहुत कोशिश की, हमारी टीम ने बहुत एफर्ट की, एक घंटा हम उनको बचा नहीं पाए, वो चले गए। क्या ले जाओ? एक घंटा पहले पेशेंट आया था, अभी क्या जा रहा है बाहर, क्या जा रहा है? डॉक्टर क्या कहेगा बोलो, सबको अनुभव होगा, क्या कहेंगे? पेशेंट आया, अभी क्या कहेंगे? पेशेंट ले जाओ वापस अपना, कहेंगे बॉडी ले जाओ, है ना? क्या निकल गया उसके अंदर से? बॉडी को ले जाओ, पर उसमें से क्या निकल गया? पेशेंट बॉडी बन गया। पेशेंट बॉडी कैसे बना? क्या निकल गया? पहले भी 70 किलो था, अभी भी 70 किलो है, तो क्या निकला उसके अंदर से? आत्मा निकल गई, लाइफ फोर्स निकल गई, राइट? अब इसी डेड बॉडी में से, जो उसके बनने से पहले इच्छा थी कि मेरे बॉडी का कोई भी अंग किसी को आवश्यकता हो तो निकाल के दे देना, ट्रांसप्लांट करा सकते हो। एक पेशेंट है हॉस्पिटल में, उसको हार्ट उसका बहुत वीक है, हार्ट की पंपिंग पास से 10% रह गई, दो तीन बार हार्ट अटैक आ गया, हार्ट की पंपिंग खत्म हो गई। अब इस पेशेंट का और उस पेशेंट का अगर हम टिश्यू मैचिंग कर लें, उसको हम हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी मैचिंग कहते हैं, अगर ये निकाल के हार्ट अब मैचिंग हो जाए, तो ये हार्ट यहां से निकाल के वहां लगा दो, ये हार्ट यहां काम नहीं करे कुछ मर्जी कर लो, क्यों तो ये हार्ट वहां काम करना शुरू कर देगा उस पेशेंट में। इसका क्या अर्थ हुआ? इस डेड बॉडी में जिसमें आत्मा नहीं है, ये हार्ट काम नहीं कर रहा है, किंतु वो एक दूसरा आदमी जिसमें आत्मा है, अभी जिंदा है, उसमें ये हार्ट लगा दिया तो काम करना शुरू कर दिया। इसका क्या अर्थ है? हार्ट को चलाने वाला कौन? आत्मा, नहीं? तो इस बॉडी को, हार्ट को चलाने वाला, सांस लेने वाला, पेट में खाना पचाने वाला, है ना, दिमाग में, ब्रेन की सेल्स में काम करने वाला, आंखों से देखने वाला, कानों से सुनने वाला, मुख से बोलने वाला कौन, ठंडी गर्मी महसूस करने वाला कौन? आत्मा, राइट? समझ, किडनी हमने ट्रांसप्लांट कर दी, किडनी काम करना शुरू कर दी, वहां काम नहीं कर रही थी डेड बॉडी में। तो ये जो है आत्मा, तो सत्य क्या है? एक इंसान का सत्य क्या है? मैं आत्मा, राइट? दूसरा सत्य क्या है? परमात्मा। आत्मा कभी पैदा नहीं होती, आत्मा कभी मरती नहीं, बदलती नहीं, वैसी पॉइंट ऑफ लाइट है, पॉइंट ऑफ एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी है। परमात्मा भी क्या है? सदा, गॉड इज ट्रूथ, वो भी सदा सत्य है। सी संबंध, परमात्मा आत्मा परमात्मा का, आत्मा परमात्मा का संबंध सत्य है, सदा ही है। देह के संबंध बदल सकते हैं, हमारे माता पिता है, शरीर छोड़ दिया, माँ ने शरीर छोड़ा, माँ मर गई, माँ नहीं है, पिताजी ने शरीर छोड़ा, पिताजी नहीं है, पति पत्नी आज है, बच्चे हैं, बच्चा कल छोड़ के चला गया हमको, उसने कह दिया मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा, है ना, तुम्हारे पास नहीं आऊंगा आगे से, तो क्या अब बच्चे का संबंध कब बिगड़ गया? बच्चा नाराज हो गया, पति पत्नी का आपस में आप तो रोज देखते होंगे, घर में होता नहीं होता, तो झगड़ा हो गया आपस में, क्या हो गया? मनमुटाव हो गया, अभी संबंध खत्म हो गया। तो ये देखे संबंध आज है कल नहीं रहेंगे, किंतु आत्मा परमात्मा का संबंध सदा है, सदा ही रहेगा, नहीं रहेगा। और सब संबंध है हमारे उनके साथ, माता भी है, पिता भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, बंधु, सखा, साजन, सर्जन, बच्चा, सब कुछ संबंध हमारे उनके साथ है। आप किसी अपने पति के साथ ऐसा संबंध कह सकते हो कि तुम्हें मेरे पति भी हो, पिता भी हो, बेटा भी हो, तुम ऐसे बोल सकते हो क्या? बहने बताओ, ऐसे बोल सकते हैं? या अपनी पत्नी को आप ऐसा बोल सकते हो, तुम्हें मेरी पत्नी भी हो, माँ भी हो, बेटी भी हो, सब कुछ तुम मेरी हो, ऐसे बोल सकते हो? तुम मेरी बहन भी हो, सब कुछ हो, है ना, नहीं बोल सकते, एक ही संबंध निभा सकते हैं ना, क्योंकि भगवान से हमारे सर्व संबंध। और फिर सृष्टि रूपी ड्रामा, ये संसार एक ड्रामा है, इस ड्रामा में हम सब आत्मा एक्टर्स हैं, पर और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। कोई किसी के घर में, इस घर में जन्म लिया, मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया, किसने मुकेश अंबानी के घर में जन्म लिया, किसी ने कहीं झुग्गी झोपड़ी में जन्म लिया, वहीं पे क्यों लिया जन्म? आप सब हैं, आप सबकी शादी हुई है ना, शादी सभी की हुई ना, किसी की, किसी कोई को ऐसा भी जिसकी नहीं हुई हो, सभी की शादी हुई होगी ना। अच्छा, आप मान लीजिए आप हैं, मतलब मेल हैं, जैसे पुरुष हैं, तो आपकी शादी उन्हीं से क्यों हुई जो अभी आपकी पत्नी, उससे शादी क्यों हुई, किसी और से क्यों नहीं हो गई? पड़ोस में भी लड़की रहती थी, कॉलेज में भी लड़कियां थी, उनसे भी दोस्ती हुई होगी, तो उससे शादी क्यों नहीं, क्यों हुई? 100 किलोमीटर दूर शादी क्यों हुई आपकी? क्या समझते हैं आप? 50 किलोमीटर दूर शादी क्यों हुई? उसी से क्यों हुई? क्योंकि उससे आपके कर्मों का हिसाब किताब है, नहीं ऐसा? उससे लेन देन है कर्मों का, और वो कर्मों का हिसाब किताब लेने देने के लिए शादी हुई है। वही आत्मा आपका बच्चा क्यों बनके क्यों आई, बच्ची बनके क्यों आई? मैं कर्मों का हिसाब किताब की बात कर रहा हूं। कर्मों का हिसाब किताब क्या होता है? कर्मों का हिसाब किताब क्या है? अगर 100 साल पहले आपने किसी 10 रुपए उधार लिया और वापिस नहीं किया, इस जन्म में वो आपका या तो पति बन के आएगा, पत्नी बन के आएगा, मां बन के आएगा, बेटा बन के आएगा, या कुछ बन के आएगा, और आपको उसको 10 रुपए वापिस करने पड़ेंगे, साथ में कर्मों का हिसाब किताब या ब्याज भी वापिस देना पड़ेगा। ब्याज कितना हो गया आप सोचो जरा, ब्याज 10 रुपए का ब्याज 100 साल में कितना हो गया, कितना हुआ बताइए, कौन बताएगा? 1917 से लेकर 1947 तक 3 साल में पैसा डबल होता था, पुराने लोग बता सकते हैं, जैसा मुझे पता लगा मैं आपको बता रहा हूं। 1947 से 67 तक 4 साल में पैसा डबल होता था, 1967 से 1987 तक 5 साल में पैसा डबल होता था, और 1987 के बाद अब 6-7-8 साल में पैसा डबल होता है। तो अगर आप लगाओ तो 20 बार डबल हो गया, 20 बार डबल करके देखना 10 रुपए को, 4,19,00,000 रुपया बनता है। कितना बनता है? 4,19,00,000 रुपया बनता है। तो 10 साल के बाद आपको 10 रुपया प्लस 4,19,00,000 वापस करना पड़ेगा। ये है कर्मों का हिसाब किताब। 20 गुना, किसी की आपने एक बार इंसल्ट की 100 साल पहले, 100 साल के बाद कितनी बार इंसल्ट होगी आपकी? 20 बार इंसल्ट होगी, 20 गुना तो होगी ना, कम से कम 20 बार इंसल्ट होगी। किसी की एक बार ग्लानी की, एक बार धोखा दिया, आपको 20 बार धोखा मिलेगा उसी से। ये है कर्मों का हिसाब किताब। और वो चुकतू करने के लिए हम आसपास आपस में एक साथ आए हैं, चाहे बिजनेस पार्टनर बने, चाहे पड़ोसी बने, चाहे नौकर चाकर बने, चाहे बॉस बने, चाहे नीचे काम करने वाले बने। ये है कर्मों का हिसाब किताब, ये है ड्रामा, और परमात्मा इस ड्रामा का डायरेक्टर है। हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है, सुप्रीम जस्टिस भी है। तो ये है, इसको मैं बोलता हूं ABCD। ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, बाबा मीन्स परमात्मा, सी फॉर कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा। तो राजयोग मेडिटेशन कुछ और नहीं है, इस ABCD को, इस ज्ञान को रियलाइज करते रहो, अनुभव करते रहो। ये सत्य है, चारों चीज सत्य है, आत्मा भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है, और सी संबंध भी सत्य है, और डी ड्रामा भी सत्य है। मूलधन कभी माफ नहीं हो सकता है। तो ये जितना अभी क्या है, जितना इस ABCD को हम रिवाइज और रियलाइज करते हैं, रियलाइज का मतलब क्या है, रियलाइज माना रियल को एनालाइज करो, रियल का विश्लेषण करो, सत्य का विश्लेषण। मैं आत्मा हूं, कैसे हूं मैं आत्मा, जो आज रामनाथ भाई ने बताया मैं आत्मा हूं, ये समझ में आ गई। फिर इसका रूप कैसा है, कैसे ही देखने में, शरीर तो ऐसा है, मैं आत्मा कैसी हूं, गुण क्या है, कैसे चला रही हूं शरीर को, क्या कर रही हूं शरीर के अंदर बैठ के, कहां से आई कहां जाना है, कौन से कर्म का असर कैसा है। तो ये अंदर से एनालाइज विश्लेषण करो। परमात्मा, परमात्मा कौन है, कैसा है, देखने में कैसा है, क्या करता है वो, कैसे संसार को कंट्रोल कर रहा है, कैसे डायरेक्शन दे रहा है, ऐसा करो। ठीक है, तो ये जो है ये सत्य है। तो राजयोग मेडिटेशन क्या है, बीइंग द ट्रूथ, सत्य बनना, लिविंग द ट्रूथ, सत्य रहना और सत्य रियलाइजिंग द ट्रूथ, सत्य अनुभव करते रहना। तो आपको मैं यहां बताता हूं कि इसमें पावर ऑफ साइलेंस की बात कैसे आई। नॉर्मली जब हम आज हम बैठे हैं यहां पर, नॉर्मली हम जब कभी बैठे होते हैं तो हमारे 90% विचार या तो पास्ट से आ रहे होते हैं, भविष्य से आ रहे होते हैं, 90% विचार। नॉर्मली आजकल कहते हैं 30 विचार एक मिनट में आते हैं। जो मैंने अभी ईईजी की आपसे पहले थोड़ी देर पहले बात की, ब्रेन का ईईजी की बात की, कि ब्रेन के ईईजी में आपकी जो रिदम आती है वो जब चिंता कर रहे हैं जल्दी कर रहे हैं तो 20 बार आ रही है, चिंता कर रहे हैं तो 20 कितनी बार आ रही है, 25 बार आ रही है, और जब आप इरिटेट हो रहे हैं तो 30 बार आ रही है। और ये देखने में जितनी ब्रेन की रिदम सेकंड्स में होती है उतने ही लगभग विचार हमारे एक मिनट में होते हैं। तो जल्दी किसे कहेंगे जब एक मिनट में 20 विचार आ रहे हैं, चिंता किसे कहेंगे जब एक मिनट में 25 विचार आ रहे हैं, और जब आप इरिटेट किसे कहेंगे, ये डर लग रहा है अंदर से, तो 30 विचार एक मिनट में आ रहे हैं। कहते हैं आजकल 30 विचार एक मिनट में एवरेज लोगों को आ रहे हैं आज के समाज में, और उसमें से 90% विचार कहां से आ रहे हैं, पास्ट की साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट से और भविष्य की इनसिक्योरिटी से, 90% विचार वहां से आ रहे हैं। तो कितने कितने 30 में से कितने विचार पास्ट से या भविष्य से आ रहे हैं बताओ, 27 विचार वहां से आ रहे हैं। वर्तमान से कितने विचार आ रहे हैं, 3 विचार आ रहे हैं सिर्फ। तो 30 विचार है अशांति और 3 विचार है शांति। और राजयोग मेडिटेशन क्या करता है, हमारे विचारों को 30 पास्ट के विचारों को और भविष्य के विचारों को बंद कर देता है, सिर्फ वर्तमान में लेकर के आ जाता है। तो 30 विचार से कितने विचार हो गए, सिर्फ 3 विचार। यह है पावर ऑफ साइलेंस। जब अपने को जब देखिए आप अभी अभी भी आप करके अनुभव करके देखिए, यहां बैठे बैठे अनुभव करके देखिए, आप अपने आप को रियलाइज करिए, मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, फील करो मैं यहां सितारा चमक रहा हूं, मैं आत्मा यहां हूं, मैं ऊर्जा हूं, शरीर मैटर है, मैं आत्मा यहां हूं, और आत्मा से साथ एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, आध्यात्मिक एनर्जी सारे शरीर में नरिश कर रही है, एक एक सेल को महसूस करो, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, और वो सातों सातों एनर्जी का पावर हाउस है, इसे महसूस करो आप, वो मेरा पिता है तो उसकी प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार है, उसे आप महसूस करें, सातों एनर्जी मुझ में आ रही है, ऐसा महसूस करें, और सी संबंध वो मेरी मां भी है बाप भी, एक एक संबंध से आप इसकी बहुत गहराई से आप इसको अनुभव कर सकते हैं। क्लास में इतना टाइम नहीं कि मैं आपको इतना गहराई से बताऊं, किंतु आप इसका हर संबंध जब आप क्लास में आपसे बात करेंगे तो कैसे कैसे एक एक संबंध से अनुभूति करनी होती है, उसी को राजयोग भी कहते हैं। और फिर डी ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, किसी ने आपको दुख दिया अच्छा हुआ बुरा हुआ, किसी ने आपकी इंसल्ट की अच्छा हुआ बुरा हुआ, किसी ने आपके 5 लाख रुपए ले लिए वापस नहीं किए अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, बोलो अच्छा हुआ बुरा हुआ, वकालत के हिसाब से अच्छा नहीं हुआ पर अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने शायद पिछले जन्म में इससे इतने पैसे लिए थे, अब ब्याज के साथ मुझे 5 लाख वापस ने लिए और मुझे वापस करने का उसका संकल्प भी नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि हमने उसको 10 रुपए या 20 रुपए उससे लिए थे 50 साल 100 साल पहले, अब वो उसने ब्याज के साथ वापस ले लिया। मैं सोच सोच के परेशान हूं, मेरा सब कॉन्शियस माइंड इससे भर गया है, इसने मेरे पैसे क्यों नहीं दिए, इसको फील भी नहीं होता क्या, इसको ऐसा नहीं होता क्या, इसको ऐसा नहीं होता क्या, और वो रियल में उसको फील नहीं होता है। आप कोर्ट में केस करो तो और ही प्रॉब्लम होगी, है ना, और 2-3 लाख खर्च हो जाएंगे, नहीं ऐसा होता है। तो ये जो है, ये जो फीलिंग है ना हमेशा, ये हमारे विचारों को बढ़ाती है। और जैसे ही आप कहते जो हुआ अच्छा हुआ, सारा मैट्रिक्स यहां पर है, सारी मन की बीमारियों का कारण सारे शरीर की बीमारियों के कारण, हार्ट की बीमारी कारण, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की बीमारी कारण क्या है? मैंने तो, मेरे पास तो बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, उसमें फिल्म कलाकार भी आते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी आते हैं जिनको हार्ट की बीमारी होती है और इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत अमीर लोग भी आते हैं। और मैं उनसे पूछता हूं, कई बड़े बचपन से बहुत अमीर परिवारों में रहे, मैं उनसे पूछता हूं आपकी लाइफ अभी तक कैसे कैसे बीती, कैसा रहा आपका अभी तक, आप 50 साल के हो गए अभी तक कैसे रहे, कैसे? डॉक्टर साहब बात मत पूछो। मैंने क्या प्रॉब्लम है, आप तो इतने अच्छे परिवार में जन्म लिया, इतने आपके पास पैसा है, इतना आपके माता पिता, इतने बचपन से जब से घर में आप यू आर बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून इन माउथ। कहते हैं डॉक्टर साहब बात मत पूछो, मेरे दुखों की बात मत पूछो। जब भी अपने पास्ट को देखते हो आपको क्या याद आता है? अगर आपके पास एक बर्तन है उसमें दो लीटर दूध है, उसमें मक्खी गिर जाए एक, तो क्या नजर आएगा आपको? दूध नजर आएगा, मक्खी नजर आएगी? बोलो क्या नजर, दूध नजर आता है, मक्खी नजर आती है? मक्खी नजर आती है। ऐसे ही आपके, आपकी शादी हुई 30 साल हो गए आपस में, आपको आपके पति ने आपको कितना घुमाया या आपकी पत्नी ने आपको कितनी सेवा की 30 साल में, वो आपको याद नहीं आती है। कब उसने आपको गलत बोला था, आपकी इंसल्ट की थी, आपके मां के बारे में, पिताजी के बारे में, भाई बहन भाई गलत बोला था, वो आपको हमेशा याद रहता है, नहीं रहता है? तो पति का चेहरा दिखते ही वो याद आता है, पत्नी का चेहरा दिखते ही वो याद आती है, बात नहीं? क्या नजर आती है? मक्खी नजर आती है, दूध नजर नहीं आता है। आता है क्या? बोलो क्या नजर आता है? दूध नजर आता है, मक्खी नजर आती है? मक्खी नजर आती है। तो ये जो पास्ट के जो है ना नेगेटिव्स साइकोलॉजिकली, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भर जाते हैं और इससे विचार उत्पन्न होते रहते हैं और इसी को क्योस कहते हैं। 30 विचारों में से 27 विचार मेरे प्रेजेंट को क्राउड कर रहे हैं, उसके कारण मैं सोच नहीं पाता हूं, निर्णय नहीं कर पाता हूं। आप कोर्ट में भी जाते हैं, वकालत करते हैं, है ना, आपको राइट पॉइंट उसमें बहस चल रही है और उसमें आपके मन में राइट रूल समझ में आ जाए, एक्यूरेट रूल उसमें याद आ जाए, टाइम पर पॉइंट की बात होती है ना। एक वकील ने ये कहा, दलील दी, आपने उसके काउंटर दलील करनी है, तो अगर आपको रूल नंबर हो जो आईपीसी नंबर हो जो याद आ जाए या ऐसा वो केस याद आ जाए तो आप वो आप केस जीत गए, और नहीं वो, नहीं तो वो वकील जीत जाएगा, नहीं तो एक्यूरेट वो थॉट आ जाए। कैसे आए? जब थॉट स्पीड कम होगी। तो राजयोग मेडिटेशन से क्या होगा, जब आप रियलाइज करें मैं आत्मा हूं, ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? बोलो प्रेजेंट है कि पास्ट है या फ्यूचर है? प्रेजेंट है। परमात्मा की संतान हुई क्या है, पास्ट है कि फ्यूचर है? प्रेजेंट है। मैं आत्मा की, परमात्मा की मुझे संबंध है, ये माँ मेरी माँ है, बाप है, टीचर है, एक संबंध को अनुभव कर रहे हो, तो ये भी पास्ट प्रेजेंट है। और जो हुआ अच्छा हुआ, क्या हुआ? पास्ट बंद हो गया। अब जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि अभी मुझे समझ आ गई है ये धोखा क्यों दे रहा है, ये मेरी इंसल्ट क्यों कर रहा है, मेरे को तंग क्यों कर रहा है, मेरा कहना क्यों नहीं मानता है, मेरा बेटा है मेरा कहना क्यों नहीं मानता है, देर तक सोता रहता है, उठता नहीं है, ये ऐसा करता है वैसा करता है, समझ आ गई। अब मेरा चिंतन नहीं चलता, बहुत प्यार से समझाता जरूर हूं कि तू टेंशन में नहीं आता। तो जो हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। पहले मैं प्रेजेंट में भी टेंशन में रहता था, और जो होने वाला, क्योंकि आज जैसा कल मेरा बीज बोया था उसका फल आज मेरे को इस बीमारी के रूप में मिला, टेंशन के रूप में मिला। आज मैं जो नई श्रीमत के नई डायरेक्शन के अनुसार, समझ के अनुसार मैं कार्य कर रहा हूं, जैसा बीज वैसा फल। आज शाम को क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। कल क्या होगा? उससे भी अच्छा होगा। परसों कैसा होगा? उससे भी बहुत अच्छा होगा। और भविष्य में क्या होने वाला है वो तो सबसे अच्छा होने वाला है। तो जब इस तरह से हम इस एबीसीडी को रिवाइज रियलाइज करते जाते हैं तो हमारी मन और बुद्धि पवित्र बनती जाती है। तो हमारे विचारों के, हमें जो विचार इसेंशियल है वही आते हैं। तो पवित्रता क्या है? अब जैसे ही एबीसीडी को आप रियलाइज करते हो, ये पावर ऑफ साइलेंस आपके पास आ गई, वेस्ट विचार और नेगेटिव विचार आने बंद हो गए। अभी हाँ जी, तो बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। तो ये नेगेटिव विचार आने बंद हो गए, हो ही नहीं हुए नेगेटिव विचार आने बंद हुए ना। पहले नेगेटिव और कितने थे, नेगेटिव और वेस्ट विचार कितने, 27 विचार नेगेटिव और वेस्ट थे, उससे क्योस हो रहा था। अभी क्या आई, 3 विचार रह गए। तो जितना हम ये अभ्यास करते जाएंगे, एबीसीडी का अभ्यास करते जाते, इस राजयोग का अभ्यास करते, तो उतना हमारे अंदर क्या होता, यही हमने करके कराके देखा, ईजी पे कराके देखा लोगों का। इस एबीसीडी को आप अंदर अंदर अनुभव करो, पेशेंट्स को कहा, जो पेशेंट हमारे पास आते थे ना, उनका अनुभव करो। तो हमने थोड़ी देर में देखा, जो फ्रीक्वेंसी 13 से 18 थी, जो फ्रीक्वेंसी हमने बीटा रिदम थी, थोड़ी देर में अल्फा रिदम हो गई। अल्फा रिदम माना 8 से 12, रिदम कम होते होते 1 सेकंड में 8 से 12 आ गई, 8 आ गई, 8 माना शांति आ गई। हमने कहा और गहरे से अनुभव करो, थोड़ी देर में थीटा रिदम आ गई, थीटा रिदम माना 4 से 7 वाले में आ गए, 6 पे आ गए, वो लव फुल, उसको जो अल्फा रिदम को हम कहते हैं पीसफुल रिदम कहते हैं वैसे भी, और थीटा रिदम को लव फुल रिदम कहते हैं। तो प्यार की फीलिंग आ गई मतलब उनके अंदर, और कहा और अभी गहराई में जाओ, तो उनकी रिदम डेल्टा रिदम आ गई, दिखाई दे रही सामने ऐसे। साथ में हमने हार्मोन्स के टेस्ट भी कर रहे हैं, हार्ट रेट भी देख रहे हैं, लाल तार हरी तार भी देख रहे हैं, वो भी सब टेस्ट चल रहे हैं। तो देखा हमने ये अनुभव देखा कि उसका थोड़ी देर में डेल्टा रिदम में पहुंच गए, 4 पे पहुंच गए, 3 पे पहुंच गए, 2 पे पहुंच गए, और उस समय बहुत मुस्कुरा रहे हैं ऑटोमेटिक, चिंतन करते करते उनका चेहरा बहुत खुश हो गया, मुस्कुरा रहे हैं अभी, उनके चेहरे पर चमक आ गई, जैसे खो गए, आनंद में खो गए ऐसी फीलिंग में। ऐसे साथ साथ जब हमने हार्मोन्स को स्टडी किया साथ साथ, तो उनके खुशी वाले हार्मोन्स बढ़ गए, हैप्पी हार्मोन्स, जिनको एंडोर्फिन्स कहते हैं, नेचुरल मॉर्फिन होती है वो, एंडोर्फिन क्या है, जो अंदर निकलती है जब आप शांति प्यार खुशी का अनुभव करते हैं, तो उसको नेचुरल मॉर्फिन एंडोर्फिन, वो एंडोर्फिन निकले आए। उससे जैसे भी पेन होते हैं ना बॉडी में, जो कोई भी पेन हो, पैरों में दर्द हो रहा हो, कमर में दर्द हो रहा, सिर में दर्द हो रहा हो, हार्ट में दर्द हो, ठीक हो जाता है। मॉर्फिन सबसे स्ट्रांगेस्ट पेन किलर है दुनिया का, और पता है मॉर्फिन माना अफीम, अफीम खाने वाला कैसे महसूस करते हैं, लगता है उड़ रहे हैं, बहुत हल्का महसूस करते हैं। तो ये जो है मेडिटेशन करने से क्या हुआ, उनके अंदर नेचुरल मॉर्फिन आ गई। तो ये है पावर ऑफ साइलेंस, जैसे जैसे आप इसका अनुभव करते जाओगे, विचार कम होते जाएंगे, विचार एकाग्र होते जाएंगे, तो उतना आपके अंदर आपकी शांति प्यार खुशी की एनर्जी बढ़ती जाएगी, साथ साथ खुशी वाले हार्मोन्स एंडोर्फिन निकलते जाएंगे, आपका पेन खत्म होती जाएगी बॉडी से, और साथ साथ आपकी जो हरी तार, मैंने बताया पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम, रिलैक्सेशन सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, हार्ट रेट भी कम हो रही है, बीपी भी कम हो रहा है, आप रिलैक्स भी, एक होता है वोलर स्किन रेजिस्टेंस, वो भी हम नाप सकते हैं, स्किन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, जो जल्दी चिंता गुस्सा में क्या स्किन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जल्दी चिंता गुस्सा करने वाले को ठंडी भी ज्यादा लगती है, गर्मी भी ज्यादा लगती है, और इधर मेडिटेशन करो तो ठंडी गर्मी कम हो गई, वो अभी इसकी स्किन इतनी अच्छी बन गई, स्किन रेजिस्टेंस बढ़ गया, अब ठंडी भी नहीं लग रही, गर्मी भी लग रही, नेचुरल एयर कंडीशन ऑन हो गया, बाहर गर्मी है तो ठंडी नॉर्मल अच्छा लगने लगा, बाहर ठंडी है तो गर्म लगने लगा, और गर्म रहे तो ठंडा लगने लगा। तो आपके अंदर एसी फिट है, बाहर के एसी की आवश्यकता नहीं है। तो आप इस तरह से मेडिटेशन से पावर ऑफ साइलेंस पैदा कर सकते हो। तो इस तरह से जब आप करते हैं, तो हमने ये रिसर्च करके देखा, और इस रिसर्च का परिणाम ये हुआ कि हमने देखा कि जब ये विचारों की संख्या, मैंने पता उसी हिसाब से चलती है, तो जब पवित्रता क्या हुई कि जब आपने पवित्रता की परिभाषा क्या है, जितना एबीसीडी को रिवाइज रियलाइज करते पवित्रता आती जाती, पवित्रता माना आप अपने को आत्मा समझ के परमात्मा से कंबाइन होके दूसरों को फिर आत्मिक स्वरूप दिखाई देने लगता है, सत्य स्वरूप, और सत्य स्वरूप में व्यवहार करना सीख जाते हैं, लोगों से लगाव झुकाव प्रभाव टकराव बंद हो जाता है। पवित्रता माना किसी से लगाव नहीं, किसी की तरफ झुकाव नहीं, किसी से किसी के प्रभाव में नहीं आते हैं, किसी से टकराव में नहीं आते, और हर आत्मा के रोल को देख के हम साक्षी रहते हैं, ऑब्जर्वर रहते हैं, फंसते नहीं है, यह है पवित्रता। जब ऐसी पवित्रता आई तो उससे शांति आ गई। शांति माना ना पास्ट का चिंतन ना भविष्य की चिंता। वर्तमान में हम परमात्मा से कंबाइंड होकर के सोचते हैं, कंबाइंड होकर देखते हैं, कंबाइंड होकर पढ़ते हैं, कंबाइंड होकर सुनते हैं, कंबाइंड होकर हर काम करते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं। ये शांति, पास्ट और प्रेजेंट भविष्य खत्म, वर्तमान में रहते हैं। यही वर्तमान कल पास्ट बन जाता है, अच्छा पास्ट बन जाता है, और यही वर्तमान कल अच्छा फ्यूचर बन जाता है, राइट। इसमें 8 संकल्प ही आते हैं एक मिनट में, कॉन्शियस माइंड से आते हैं। 16 संकल्प जब आ रहे थे, 15 संकल्प, तो 15 विचारों में 8 कॉन्शियस माइंड से आ रहे थे, 7 सब कॉन्शियस माइंड से आ रहे थे। अभी 8 के 8 कॉन्शियस माइंड से आ रहे, मेरा कंट्रोल है। शांति किसे कहते हैं? जब मेरा फुल कंट्रोल है स्टीयरिंग पे, ब्रेक पे पूरा कंट्रोल है, ये है शांति। जब जब मैंने और गहराई में गया मैं इसके, तो मेरे सिर्फ 6 विचार रह गए। 6 विचार का मतलब क्या है? अब प्यार किसे कहते हैं? प्यार माना आप अपने को आत्मा परमात्मा से कंबाइन हो जाओ, क्योंकि सातों गुणों का सागर है। और फिर हर आत्मा का रोल उसमें, आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपका पति भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, बेटी बहू जो भी हो सकता है, आपके नीचे काम करने वाले एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, नौकर चाकर भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, उनका रोल है समाज में अलग अलग। उसके रोल को हर आत्मा के रोल को महत्व दो और बिना शर्त के आदर से स्वीकार करो, इसे कहते हैं प्यार। मतलब प्यार का मतलब क्या है? अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एज यू आर। पति पत्नी भी आपस में शादी करते हो, क्या होता है, क्या कहते हैं? तुम जो हो जैसे हो मेरे हो, तुम जो हो जैसी हो मेरी हो। पहले मेडिकल टेस्ट नहीं कराते उनका, है ना? शादी से पहले मेडिकल टेस्ट कराते हैं क्या? साइकोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं क्या? पति पत्नी का कराती है, पत्नी पति का कराते हैं। तुम जो हो जैसे हो मेरे हो, अनकंडीशनल, नहीं तो वो है प्यार। तो जब ऐसा दुनिया में सब आत्माओं को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, जजमेंटल नहीं बनते हो, इसको कहते हैं रूहानी प्यार। हालांकि अपने नियम मर्यादों में रहकर व्यवहार करते हो, ये रूहानी प्यार है। ऐसे रूहानी प्यार से संतुष्टता पैदा होती है। उस संतुष्टता को हम कहते हैं अतिंद्रिय सुख। क्या कहते हैं उसको? एक तो होता है सेंस ऑफ हैप्पीनेस, आपने खाया बहुत अच्छा लगा, ये इंद्रियों का सुख है। कुछ देखा आपको सुख मिला, ये इंद्रियों का सुख है। आपने कुछ सुना, किसी के गीत सुना, ये इंद्रियों का सुख है। ये अल्प काल का होता है और इच्छाएं पैदा करता है, एडिक्शन पैदा करता है, बीमारी पैदा करता है। एक होता है अतिंद्रिय सुख। आत्मा परमात्मा के प्यार में जब आप सबसे संतुष्ट हो, आपकी इच्छाएं नहीं रही, इच्छा मात्र मध्या हो गई आपको, तो ये जो फीलिंग है, मैं आत्मा परमात्मा के नजदीक हूं, मैं आत्मा परमात्मा के बिल्कुल पास में हूं, वो मेरा है। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा, जैसे आप अगर मोदी के भी नजदीक पहुंच जाओ, मोदी का टेलीफोन नंबर डायरेक्ट मिल जाए, मोदी का जब डॉक्टर जब भी आपको आवश्यकता हो मेरे को फोन कर लेना, मैं काम कर दूंगा, तो आप कैसे महसूस करेंगे? मैं काम करा दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी काम करना हो मुझे बता दो, जरा एक फोन करना, ये हॉटलाइन नंबर है, कभी कभी बिजी नहीं मिलेगा, आधी रात करो तो आधी रात भी कर दूंगा, कैसा महसूस करेंगे? अच्छा, ऐसा हॉटलाइन नंबर परमात्मा से मिल जाए तो क्या हो जाए? वो तो मोदी का भी बाप है, है ना? ओबामा इसका भी बाप है, ट्रंप का भी बाप है ना वो तो, नहीं या ट्रंप का कोई और बाप है, वही बाप है ना एक, उसका आपका हॉटलाइन नंबर मिल जाए, वो कहे जब आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरी मेरी गोदी में, मेरे पास आके बैठ जाओ, वो तो कहता है गोदी में आके बैठ जाओ मेरी। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा कहते हैं ना, परमात्मा कहता है मेरी गोदी में आके बैठ जाओ। अगर उसकी गोदी में बैठने की फीलिंग आ जाए और उसका हाथ मेरे सिर पे आ जाए, तो ये जो फीलिंग है वो अतिंद्रिय सुख की फीलिंग है, सुपर सेंसर जॉय। और फिर आनंद। आनंद क्या चीज है? आनंद वो चीज है जिसमें आपके अंदर आप आत्मा परमात्मा के प्यार में खो जाए। आनंद माना आ माना बंधन। आत्मा पंछी है, उड़ता पंछी है, इस देह रूपी पिंजरे में बंद है, और इस देह रूपी पिंजरे जैसे वो आत्मा परमात्मा के देह और देह की दुनिया के बंधन के पार आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाए, उस अनुभूति को कहते हैं आनंद। और जितना इस एबीसीडी का अभ्यास करते जाते हैं, हमने इस पे प्रैक्टिस करके करा के रखा दिल वालों को, दिल वाले हम कहते हैं, हार्ट पेशेंट नहीं कहते उनको, उनको दिल वाले कहते हैं, हार्ट पेशेंट नहीं कहते, उनमें उनको करा के देखा, तो जैसे छह हुआ तो उनको रूहानी प्यार की फीलिंग, एक प्यार की फीलिंग आई, चार पे उनको सुख की फीलिंग, अत्यंत सुख की फीलिंग आई, एबीसीडी डी ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो होने वाला सबसे अच्छा। जैसे ही आपने ये किया, आप कहां पहुंच गए, परमात्मा की गोद में पहुंच गए। वो दो मना अत्यंत सुख की, चार तीन मना अत्यंत सुख की फीलिंग, तीन एबीसी आत्मा परमात्मा संबंध कनेक्शन, और दो मना आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो गई, ये दो दो फ्रीक्वेंसी रह गई, उसे डेल्टा रिदम में आ गए, उसे कहते हैं आनंद। और इनका कनेक्शन फिर हमारे शरीर से है। जब आपने शांति की अनुभूति की तो आपके लंग्स में ऑक्सीजन बननी शुरू हो गई। शांति का कनेक्शन हमारे फेफड़ों से है, जितनी शांति होगी उतना अधिक ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जाएगी। जितना आप सबको स्वीकार कर लेंगे आदर के साथ बिना शर्त के, उतना आपके हार्ट की आर्टरीज खुल जाएंगे, सारे ब्लॉकेज निकल जाएंगे। आपकी हार्ट की आर्टरीज क्यों ब्लॉक होती है, ये ऐसा है, इसको मैं देख नहीं सकता, इसके बगैर मैं रह नहीं सकता, इसके बगैर मैं रह नहीं सकता, इसको मैं देख नहीं सकता, इस हिसाब से काम होना चाहिए, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इतनी जल्दी काम करो, मेरे हिसाब से करो, जल्दी चिंता गुस्सा उदासी, मुझे यही खाने को चाहिए, ये थाली साइड में कर दी, है ना, ये मुझे पसंद नहीं है, ये जो फीलिंग है ना, कुछ स्वीकार नहीं करते हैं, तो हार्ट की आर्टरी बंद होती है, हार्ट अटैक आता है। और ये जो आपके अंदर पावर है ना, ये है पावर ऑफ साइलेंस। तो जितनी शांति आती जा रही, जितनी पवित्रता आती जा रही, पवित्रता आई, ईश्वर शांति आई, शांति से प्यार आया, रूहानी प्यार, फिर अत्यंत सुख की फीलिंग आई। अत्यंत सुख क्या है, लीवर और पेट, कहते खुशी जैसी खुराक नहीं। आपने अत्यंत सुख की अनुभूति कर ली, इच्छाएं कम कर ली, तो क्या हुआ, अब हाजमा ठीक होने लगा। हमारी बहन भाइयों को क्या होता है, पेट में गैस बहुत बनती है, क्यों बनती है, एसिडिटी बहुत होती है, खाना पचता नहीं है, क्यों नहीं पचता, नाजुक स्वभाव होता है, सेंसिटिव नेचर, इसने ऐसा बोला मेरे को, इसने ऐसा किया, सोचते ही उसी को सोचते रहते, खाते भी रहते सोचते भी रहते हैं, और फिर पेट में गैस बनती है, भारी हो जाता है पेट, है ना। फिर वो लिखा होता है, खूब खाओ हाजमोला से पचाओ। तो हाजमोला की आवश्यकता नहीं, खुशी की आवश्यकता है, खुशी जैसी खुराक नहीं। और फिर आनंद आया तो हार्मोन्स ठीक हो गए, आपका हाइपोथैलेमस के, पिट्यूटरी के हार्मोन्स, पीनियल के हार्मोन्स, थायराइड के हार्मोन्स, पैराथायराइड, पेनक्रियाज, इंसुलिन, डायबिटीज है, ठीक हो जाए। तो इस तरह से सारा सिस्टम, आपके जोड़ खराब है, मसल्स खराब, ज्वाइंट्स खराब है, कमर की हड्डी खराब है, गर्दन की हड्डी खराब है, क्यों खराब है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, क्यों खराब है, आपकी शक्तियां नहीं है, आपकी है। आठ शक्तियां होती ना, वो मेरे, हमारे टाइम मेरा हो गया है, तो हमने जो ये रिसर्च जो की, ये तो इस तरह से पावर ऑफ साइलेंस है ना। तो ये जितना प्रैक्टिस करते जाओ उतनी पावर ऑफ साइलेंस जमा होती जाए। सबसे बढ़िया टाइम 4 से 5 का है, सुबह 4 बजे उठ के अपने को बैठ बैठ के एबीसीडी को रिवाइज रियलाइज करना शुरू कर दो, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप आनंद में पहुंच जाओगे, और आनंद में आपके हार्मोन सारे परिवर्तन हो जाएंगे। हार्मोन परिवर्तन होंगे, आपकी लाइफ म्यूजिक बन जाएगी, ये हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियाज, एड्रेनल गोनेड्स, सेक्स ग्लैंड, ये सातों ग्लैंड जीवन म्यूजिक संगीत बन जाएगा, सारे हार्मोन हार्मोनियस रिलीज हो जाएंगे और आप शक्तिशाली बन जाएंगे। और फिर 7 से 8 तक चुप रहो, 8 बजे तक चुप रहो, कुछ बोलो मत, जहां तक हो सके नहीं बोलो, मोबाइल टीवी से बच के रहो, अखबार 8 बजे के बाद पढ़ो, क्योंकि अखबार टीवी और मोबाइल में क्या होता है, नेगेटिव विचार होते हैं, नेगेटिव भावनाएं होती हैं, ये 8 बजे के बाद डालो, क्योंकि 8 बजे कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है एड्रिनल ग्लैंड से, 8 बजे इसकी पीक हो जाती है, तो जो भी विचार भावना आपके मन में 8 बजे तक आती है उससे वो हार्मोन निकलता है। अगर आपका हार्मोन ये ठीक निकल गया, सारा दिन शांति प्यार खुशी से काम करोगे, शांति प्यार खुशी माना कम विचार में ज्यादा काम होगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एक्यूरेट टाइम पे आपको एक्यूरेट पॉइंट याद आएगा कोर्ट में, थोड़े समय में ज्यादा काम कर पाओगे, और सदा आपके चेहरे पर शांति रहेगी, प्यार रहे, खुशी रहेगी। और साथ साथ एक बात मैं और बताता हूं आपको, इस पे हमने फिर और आप स्टडी की है, जब आपका आभामंडल, जब आप 15 जब फ्रीक्वेंसी होती है तो आपका आभामंडल यहां तक होता है स्किन के लेवल पे, जब आप 8 आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो आपका आभामंडल 6 इंच का हो जाता है, 6 इंच माना लगभग इतना, 6 इंच इधर, 6 इंच इधर, 6 इंच इधर, पूरे शरीर के आसपास, वो आभामंडल कुछ और नहीं है, शांति प्यार खुशी की एनर्जी है जो आपके आसपास इकट्ठी हो जाती है। और जब आप 7 पे पहुंच जाते हो तो दो फुट का आरा हो जाता है, दो फुट, दो फुट कितना होता है, दो फुट इधर, दो फुट इधर, दो फुट ऊपर। और जब आप छह पे पहुंच जाते हो, सबको स्वीकार कर लेते हो, तो आपका ऑरा आठ फुट का हो जाता है, आठ फुट इधर, आठ फुट पीछे, आठ फुट चारों तरफ है ना, आत्मा तो चारों तरफ है ना, तो सोलह फुट हो गए ना, तो सोलह फुट तक आपका इफेक्ट हो जाता है, शांति प्यार खुशी की एनर्जी। आपके चैम्बर में कोई आएगा वो अपने आप ही शांत हो जाएगा, आपको शांति करने की आवश्यकता नहीं है, वो चुप हो जाए, गुस्सा लड़ाई करता हुआ आएगा, गुस्सा करता हुआ आपके कमरे ठंडा हो जाएगा, आपके कमरे जैसे कोई बाहर गर्मी से आए, पंखा एसी में आ गया, ठंडा हो गया नहीं हो गया, तो आपका कमरा क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा, एसी मना वो ठंडक हुआ इतना शांति, मन की शांति आ जाएगी। आपने छह तक पहुंच गए, अभी आपने पांच कर लिया, तो कितना हो जाएगा, बत्तीस फुट तक ऐसा हो जाएगा, बत्तीस इधर, बत्तीस इधर, तो आपके पूरे मकान जहां रहते हैं उसमें सब में चारों तरफ क्या हो जाएगा, शांति 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 प्यार खुशी हो जाएगी। और उसके बाद अगर आपने तीन पे पहुंच के कितना हो जाएगा, बत्तीस को चार से गुना कर दो, एक सौ अट्ठाईस फुट हो जाएगा, एक सौ अट्ठाईस इधर, एक सौ अट्ठाईस इधर। तो ये रियल है, ये बात आपने देखा होगा, यह सेंटर आप ब्रह्मा कुमारीज में आए, कितनी शांति की अनुभूति कर रहे हैं आप, कैसे दीवारों से शांति निकल रही है क्या, यहां जो राजयोग प्रैक्टिस करते हैं उनके उनके वाइब्रेशन निकल रहे हैं, शांति के, प्यार के, खुशी के, आनंद के, वो आप महसूस कर रहे हैं। इसी रिसर्च को हमने किया, आज तक हम 8000 दिल वालों, 8000 हार्ट पेशेंट जिनकी एंजियोग्राफी हो चुकी है उन पे हम रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च की है हमने, उनको राजयोग मेडिटेशन सिखा के, लो फैट हाई फाइबर वेजिटेरियन डाइट दे के, एक्सरसाइज कराते, सिंपल वॉकिंग सुबह सूर्य उदय के बाद, पेट साफ करने के, नहाने के बाद वॉकिंग करते हैं 45 मिनट, शाम को 30 मिनट, सनसेट के पहले 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ। उनके ब्लॉकेजेस, तीनों आर्टरीज ब्लॉक, हार्ट की पंपिंग कम, डॉक्टर बाईपास फेल हो गए, एंजियोप्लास्टी फेल हो गई, तो भी उनकी बीमारियां फुल ठीक हो गई। देखो हमारे सामने सुराना जी बैठे हैं, सुराना जी आप आ जाओ एक मिनट के लिए, इनका अनुभव सुनो। तो 8000 से ज्यादा दिल वाले सारे भारत से, विदेशों से भी आते हैं, और वो आकर के उनके ब्लॉकेज खुले बिना ऑपरेशन के, बिना एंजियोप्लास्टी के। सुराना जी एक मिनट इधर आ जाओ, सुराना जी को माइक दे दो एक मिनट, सुराना जी इधर आप ब्रीफ में बताओ, हाँ ये बताओ, ये ब्रीफ में बताओ इनको कि इनकी, देखो ये भी हार्ट पेशेंट इस प्रोग्राम में आए थे आज से 19 साल पहले, इसको माइक दे दो, माइक है, माइक दे दो, एक माइक दे दो, हाँ वहीं दे दो, चलो वहीं वहीं चले जाओ, यहाँ माइक ले आओ, माइक ले, यहीं ले आओ, माइक लेके सुनो, हाँ इधर आ जाओ,
उनका एक्सपीरियंस शेयर करने को बोलूं, क्या बोलना है उनको, मैं कान में बोल देती
हूं, हां हां ब्रीफ में बोलेंगे, माइक दे दो, माइक दो,
एक्सपीरियंस,
हाँ बस बताओ कि आप 19 साल पहले आए थे, आप कैसे, आपके एंजियोग्राफी तीन ब्लॉक थे, ब्रीफ में बताना, ज्यादा लंबा नहीं, और कैसे आप यहाँ प्रोग्राम फॉलो किया, फिर दोबारा एंजियोग्राफी में क्या हुआ, और अभी कितने साल, कैसी तबीयत है 19 साल में, बताओ बता। ले आओ माइक ले आओ, देखो आप प्रैक्टिकल अनुभव सुनो, ये राजयोग की पावर ऑफ साइलेंस क्या होती है ना, राजयोग से कैसे पावर ऑफ साइलेंस आई। हमारे पास जब आए थे 63 साल के थे, अभी 82 साल के हैं, है ना, ये भी वकील है, नासिक के हैं, बताओ।
ओम शांति,
माइक मुंह के पास, मुंह के पास,
अदर डियर डॉक्टर सतीश गुप्ता जी,
माइक मुंह के पास, मुंह के पास,
सामने बैठे हुए भाई और बहनों, आज सचमुच हमारा यह भाग्य है कि हमें डॉक्टर सतीश गुप्ता जी के मुखारविंद से ये हृदय रोग के बारे में और ये लाइफस्टाइल इंटरवेंशन प्रोग्राम के बारे में आपको सुनना मिला, और इसके बारे में मेरा स्वानुभव है कि 1998 में जब मैं यहाँ पहले दफे आया कैड कैंप में, कोरोनरी आर्टरी डिसीज रिग्रेशन कैंप में, तो मुझे मेन तीन ब्लॉकेजेस थे, 95, 85 और 80% थे, और वो एंजियोग्राफी मैंने पुणे में रूबी हॉल क्लिनिक में किया था, और उन्होंने लिख के दिया था 1998 में कि दो ढाई महीने के अंदर में आप बाईपास सर्जरी करो, लेकिन मैं 98 के पहले ही नैम में था, और मुझे पता चला था कि ग्लोबल अस्पताल में यानी माउंट आबू में ये कोरोनरी आर्टरी रिग्रेशन कैंप चालू है, तो मैंने सतीश गुप्ता जी से कांटेक्ट किया, मैं खुद माउंट आबू आया, कांटेक्ट किया और जुलाई 98 में पहला कैंप अटेंड किया। 7 दिन का कैंप रहता है, जो अभी भी फिलहाल में अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि 7 से 12 या 13 तक अभी भी चालू था। तो वो कैंप अटेंड किया, सुबह से शाम तक हमारी जीवन शैली कैसी हो, व्यायाम खान पान कैसा हो, ये समझा के बोलते हैं। और ये पहला ही कैंप मैंने अटेंड किया, तो पहले ही कैंप में मुझे बहुत राहत मिली, बहुत अच्छा लगने लगा। पहले तो मेरे को एंजॉय ना पेन था और मैं बहुत घबरा गया था, लेकिन पहले ही कैंप में मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में 2-3 कैंप मैंने अटेंड किए। फिर बाद में 2 साल के बाद में 2000 में मुंबई में जेजे स्कूल जेजे हॉस्पिटल में रिपीट एंजियोग्राफी किया और रिपीट एंजियोग्राफी में 95 का जो ब्लॉक था वो निकल गया और 85-80 का जो ब्लॉकेज थे वो 50% हो गए। और ये बात है 1998 की और अभी ये 2017 चलो यानी 19 साल पहले की। और आज मेरी उम्र है 82 की। व्यवसाय से मैं वकील हूँ। अभी हाल ही में मैं ये नेशनल जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूँ और अभी भी 82 के ईयर में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। हाल ही में थोड़ा पहले से स्टैमिना उम्र के हिसाब से कम ज्यादा हुआ है, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक कह सकता हूँ कि मैं बाईपास को बाईपास किया, सचमुच और यह जो आशीर्वाद या करामत जो है हमारे दीदी दादिया
शिव बाबा की,
हमारे शिव बाबा खास और खास तौर से मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सतीश डॉक्टर सतीश गुप्ता जी से, जो बड़े दिल से बड़े मेहनत से ये कैंप चला रहे। अभी 19 साल तक के अभी भी चला रहे, आज आखिरी दिन है शायद उनका, लेकिन तहे दिल से वो कैंप चलाते हैं और हजारों मरीजों को उन्होंने नया जीवदान दिया है, उसमें से मैं एक हूँ। नहीं तो मैंने 1998 में जब मेरे को एंजाइना पेन हुआ और बाईपास करने का बोला और मेरी बाईपास करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन उसी टाइम मैंने तय किया कि भाई मैं माउंट आबू जाऊँ, ये कैंप अटेंड करूँ। और ये कैंप अटेंड करने से सचमुच बहुत फायदा हुआ। तो मैं
एक बात बताना चाहूंगा,
आपको एक सलाह ऐसा दूंगा कि जिनको भी एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी नहीं करनी है और जिसको हृदय रोग की तकलीफ है, तो वो तकलीफ कम होने के लिए हृदय रोग न हो इसके लिए आप ये लाइफस्टाइल इंटरवेंशन प्रोग्राम जरूर अटेंड करें। इसमें खतरे की कोई बात नहीं, ना खर्चे की बात है। और ये सचमुच हमारा भाग्य है कि ब्रह्म कुमारी इसकी ओर से साल में 2-4 दफे ऐसे कोई खर्चा है ना कुछ है, सिर्फ अपना जीवन शैली लाइफस्टाइल कैसे होना है सुबह से शाम तक के वो समझा के बताते हैं। तो आप इसका
मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, ये जो है प्रोग्राम अभी जैसे ये है ना, ऐसे 8000 दिल वाले हैं, उन्होंने अपने ब्लॉकेज खोले हैं और एक एक दिल वाले का जीवन का मिशन ये है कि वो दिन रात यही सेवा करते हैं, सारे भारत में विश्व में जा जाके लोगों को सिखाते हैं। दुनिया में वो क्या बना देते हैं डॉक्टर्स, हम पहले मैं भी था उसमें, दुनिया में हनुमान बनाते हैं। हनुमान माने छाती खोलनी पड़ती है ना, अंदर राम सीता चेक करने पड़ते हैं अंदर है कि नहीं। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम उनको गणेश बनाते हैं, उनका सिर निकाल के दूसरा सिर लगा देते हैं, उनका ये पुराना सिर निकाल देते हैं और हाथी का सिर लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, गणेश बन जाते हैं, है ना। ठीक है, उनकी सोच बदल देते हैं, उनका देखना सुनना बोलना खाना पीना बदल देते हैं, है ना। हाथी के सूंड होती है ना सामने, तो हर चीज सूंघ के खाता है वो और मुंह ढका हुआ होता है ना हाथी का ना। तो ऐसे ही आपको समझ आनी चाहिए मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पीना है क्या नहीं पीना है। कान ढके होते हैं, जितना जरूरी है उतना ही सुनना है। आंखें छोटी होते हैं, जितना जरूरी है उतना ही देखना है। तो आप क्या बन गए, गणेश। तो गणेश बन जाओ तो हार्ट की बीमारी कभी आए ही नहीं। ठीक है, तो अगर आपको गणेश जी बनना हो तो आप हमारे पास आइए, ब्रह्मा कुमारी जी में आइए। ठीक है, राजयोग मेडिटेशन सीखिए तो आप क्या बन जाएंगे, गणेश, और फिर आपकी हर जगह पूजा होगी, है ना। ठीक है, ओम। तो ये है पावर ऑफ साइलेंस, शक्ति, शांति की शक्ति। जितना इसका अभ्यास करेंगे उतना शक्तिशाली बनेंगे। इसे चार जोड़ के मेडिटेशन करो, मुरली सुनने जाओ, 7 से 8 तक चुप रहो, 8 बजे तक चुप रहो, उसके बाद अपने कार्य व्यवहार में आओ, खूब काम करो, टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे सैर करो, समय पर सो जाओ, 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठो। 4 बजे उठने के बाद आधा घंटा मेडिटेशन करने के बाद 2 घंटे में, 1.5 घंटे में आप 6 घंटे जितना काम कर सकते हो। मैं तो ऐसे ही करता हूं, 1 घंटे में बहुत सारा काम, सुबह 5 से 6 बहुत सारा काम कर लेता हूं, सारी एंजियोग्राफी देख लेता हूं, सब प्लानिंग कर लेता हूं, सारे काम मैं सुबह 5 से 6 के बीच में करता हूं। तो आप भी ऐसे करें, आप सुबह 5 बजे मेडिटेशन, 5 बजे तक मेडिटेशन करके और फिर आप कुछ प्लानिंग करें, जो अपने केस है ना, आज के जो केस करने हैं, तो आपको तुरंत अच्छे अच्छे पॉइंट टच होंगे, कैसे मुझे केस फाइट करना है, स्टेटमेंट बनाने, स्टेटमेंट भी तभी अच्छे बनेंगे। 1 घंटे में 4 घंटे का काम हो जाएगा, पर टाइम पे सो जाओ, टाइम पे उठ जाओ, ठीक है। ओम शांति।